प्यारे विद्यार्थियों, श्री बालाजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाउड़ी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा ट्वेल्थ राजनीति विज्ञान की प्रथम इकाई भारत का संविधान, जिसमें 3 अध्याय थे, उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हम दूसरी इकाई राजनीति विज्ञान में दूसरी इकाई का नाम है भारत में शासन, जिसमें 1 अध्याय संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने संसद के गठन के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम लोकसभा का गठन और राज्यसभा के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुने, नोट्स बनाएं, याद करें। राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख मिलता है। राज्यसभा की वर्तमान में भारत में सदस्य संख्या 245 है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या भारत में 245 है। अधिकतम राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 हो सकती है। अनुच्छेद 80 में कहा गया है, अनुच्छेद 80 में अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा की भारत में 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। मनोनीत उन सदस्यों को करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला अथवा समाज सेवा में विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति हो। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। मनोनीत उन्हीं सदस्यों को करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला अथवा समाज सेवा में विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति हो। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित व्यक्तियों का प्रावधान, ये मनोनीत व्यक्तियों का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये प्रावधान हमारे देश में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए हैं, जो हमने पिछली इकाई में अध्ययन किया था। तो भारत में वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 245, और भारत में सर्वाधिक राज्यसभा के सदस्य यूपी से चुने जाते हैं। भारत में सर्वाधिक राज्यसभा के सदस्य यूपी से चुने जाते हैं, 31 सदस्य चुने जाते हैं यूपी से, 31 सदस्य चुने जाते हैं। वही गोवा, मणिपुर और मेघालय से 1-1 सदस्य का चुनाव होता है। वही गोवा, मेघालय और मणिपुर से 1-1 सदस्य निर्वाचित होता है। और हमारे राजस्थान से राज्यसभा के 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। हमारे राजस्थान से राज्यसभा के 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो राजस्थान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। जबकि संघ शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली एवं पुदुचेरी को ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। संघ शासित केंद्र शासित राज्यों प्रदेशों में केवल दिल्ली एवं पुदुचेरी को ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं, बाकी केंद्र शासित प्रदेशों को नहीं है। इस प्रकार अमेरिकी कांग्रेस का उच्च सदन सीनेट, अमेरिकी कांग्रेस का उच्च सदन है सीनेट, और हमारी संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। सीनेट के समान सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है। अमेरिका में उच्च सदन सीनेट है, जिसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन हमारे देश भारत में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत होता है। अब है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति द्वारा किया जाता है। अतः राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि विधायक ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राजस्थान से राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कितने सदस्य भाग लेते हैं, तो राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 हैं, तो राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन करने में राजस्थान में 200 विधायक मिलकर चुनाव करते हैं। 200 विधायक राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं और राज्यसभा का निर्वाचन करने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करना, राज्यसभा के निर्वाचन करने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग का है। राज्यसभा की अवधि, राज्यसभा की अवधि, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता है। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित नहीं की थी। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित नहीं की थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। इसके आधार पर संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तय किया गया। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इनको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। संविधान में ऐसी, संसद में ऐसी व्यवस्था स्थापित है कि प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है और उनके स्थान पर पुनः 6 वर्ष के लिए सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा के पदाधिकारी, संविधान के अनुच्छेद 64 व 89 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 64 व 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यद्यपि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति, जो संविधान के अनुच्छेद 64 व 89 के अनुसार ये व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 89 के अनुसार सभापति के अतिरिक्त राज्यसभा का एक उपसभापति होता है। अनुच्छेद 89 में ये भी बात कही गई है कि राज्यसभा के सभापति के अतिरिक्त राज्यसभा का एक उपसभापति भी होगा। इस प्रकार राज्यसभा में पदाधिकारी एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। अब नेक्स्ट आगे लोकसभा का गठन, राज्यसभा के गठन के बारे में अध्ययन किया है। अब लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार होता है, या लोकसभा के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में मिलता है। राज्यसभा का था 80 में और लोकसभा का मिलता है 81 में। वर्तमान में भारत में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है। वर्तमान में भारत में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 545। अधिकतम लोकसभा सदस्य कितने हो सकते हैं? भारत के अंदर अधिकतम लोकसभा सदस्य 552 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 545 है। 552 हो सकते हैं, ये 31वीं संविधान संशोधन 1974 द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 तय की गई थी। तो भारत में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, ये कौन से संविधान संशोधन में तय हुआ था? ये 31वीं संविधान संशोधन 1974 द्वारा तय किया गया। तो भारत में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती हैं, ये कब तय किया गया? 1974 में 31वीं संविधान संशोधन। लेकिन वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है 545, जिनमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं और 13 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से, संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मनोनीत उन्हीं सदस्यों को करता है जो हमने राज्यसभा के गठन के बारे में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था जो साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति हो, उन्हीं को हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या, सदस्य संख्या 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। लोकसभा के सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं, 80 सदस्य निर्वाचित होते हैं। वह महाराष्ट्र से 48 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि राजस्थान से लोकसभा के केवल 25 सदस्य चुने जाते हैं। हमारे राजस्थान से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25, और राज्यसभा के 10 सदस्य। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुच्छेद 326 के अनुसार 18 वर्ष या अधिक उम्र के वैश्विक नागरिक जिनका मतदाता सूची में पंजीकरण है, वे ही लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन 18 वर्ष या अधिक उम्र के वैश्विक नागरिकों द्वारा जिनका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है, वे ही लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 326 में ये निर्धारित किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन तो प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है, क्योंकि स्वयं जनता प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करती हैं। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष होगा। संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष होगा। प्रथम बैठक से कार्यकाल शुरू होता है और 5 वर्ष तक होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष की समाप्ति पर लोकसभा स्वत ही भंग हो जाती है। लेकिन अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 85 में ये बात उल्लेखित है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा को भंग करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 1976-77 में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। भारत में पहली लोकसभा का गठन अप्रैल 1952 में हुआ था। भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? अप्रैल 1952 में हुआ। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। लोकसभा के पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। ये अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा या तो शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी, ये बात कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 93 यानी 93 में ये बात कही गई है कि या तो शीघ्र लोकसभा 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। राजनीतिक रूप से ये निश्चित है कि अध्यक्ष उसी दल का कोई सदस्य निर्वाचित होता है। अध्यक्ष उसी दल का होता है जिस दल की सरकार है, जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है उसी दल में से अध्यक्ष का चुनाव होता है। उपाध्यक्ष के रूप में यह परंपरा स्थापित हुई है कि वह विपक्षी पार्टी का होगा। उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का होगा, यह परंपरा स्थापित की गई है। यद्यपि ऐसी कोई संवैधानिक अथवा राजनीतिक बाध्यता नहीं है, लेकिन ऐसी परंपरा शुरू से है कि उपाध्यक्ष हैं विपक्षी पार्टी का होगा। उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का होगा। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंप सकता है। इस प्रकार हमने राज्यसभा और लोकसभा के गठन के बारे में चर्चा की है। अब थोड़ा इन दोनों में अंतर के बारे में चर्चा कर लें तो ध्यानपूर्वक सुन लें और नोट्स बना लें। इसी में से अंतर निकलेगा। इस चर्चा में से ही राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा पहला अंतर लिखें, सारणी बना के लिखें। पहला अंतर, राज्यसभा उच्च व द्वितीय सदन है। राज्यसभा उच्च व द्वितीय सदन है। लोकसभा की तरफ लिखें, लोकसभा प्रथम व निमन सदन है, लोकसभा प्रथम व निमन सदन है। दूसरा अंतर लिखें, राज्यसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। नेक्स्ट अंतर लिखें, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत होता है, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत होता है, जबकि लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के अनुसार होता है। तो राज्यसभा के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 80 में मिलता है और लोकसभा के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 81 में मिलता है, 81 में मिलता है। नेक्स्ट अंतर लिखें, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। सामने निके लोकसभा में, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट अंतर लिखें, वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या है 245, वर्तमान में कुल लोकसभा की सदस्य संख्या है 545, राज्यसभा की है 245 और लोकसभा की है 545। नेक्स्ट अंतर लिखें, राज्यसभा के पदाधिकारियों को सभापति और उपसभापति कहते हैं, राज्यसभा के पदाधिकारियों को सभापति और उपसभापति कहते हैं। सामने लिखे लोकसभा में, लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहलाते हैं, या लोकसभा के पदाधिकारियों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहते हैं। नेक्स्ट अंतर लिखें, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सामने लोकसभा में लिखें, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट अंतर लिखें, राज्यसभा में राजस्थान के 10 सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा में राजस्थान से 10 सदस्य चुने जाते हैं और लोकसभा में राजस्थान से 25 सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा में राजस्थान से 25 सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार आज हमने राज्यसभा का गठन, लोकसभा का गठन और इन दोनों में कौन से अंतर निकलते हैं उनके बारे में चर्चा की है। तो अच्छी तरीके से याद करें, अगली क्लास में हम संसद के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।